तो हाथ जोड़ लीजिए, हमारे पीछे भगवान का ध्यान कीजिए। भगवते वासुदेवाय,
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय,
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है भगवत कथा में। भागवत धर्म के ऊपर चर्चा कल कर रहे थे। भागवत का मतलब भगवान संबंधी, और भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान स्वयं है। उसके संबंधी धर्म को भागवत धर्म कहते हैं। तो भगवान कृष्ण से संबंधी कौन सा धर्म है जिसको भागवत धर्म कहते हैं? वो धर्म जिसमें भगवान से प्रेममयी सेवा हमको प्राप्त हो। भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा हमको प्राप्त हो, उसको भागवत धर्म कहते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षण करने वाला। आकर्षण समझते हैं, अपने ओर खींचे, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव। हम क्या हैं? हम सब जो बैठे हैं इस अभी यहाँ बैठे हैं, मॉरिशस में जितने भी जीव रहते हैं और विश्व में जितने भी जीव रहते हैं, ये सब भगवान का अंश हैं। भगवद गीता में भगवान ये शिक्षा देते हैं, ममैव अंश, मेरे सारे अंश हैं। तो हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। भगवान कैसा है? कृष्ण सबको आकर्षण करता है। हम भगवान के अंश हैं, तो जैसे भगवान है वैसे हम हैं। आकर्षण को ऐसे समझिए, आपने मैग्नेट देखा है, चुंबक देखा है बड़ा, हा? चुंबक किस चीज का बना होता है? लोहे का बना होता है, और लोहे के जो टुकड़े होते हैं आयरन, वो उसको जब के चमकते हैं ना अपने आप, देखा है बच्चों ने? आप लोगों ने देखा है मैग्नेट एंड दी आयरन के पीस, उसको जाके चपक जाएंगे। छोटे टुकड़े चपक जाएंगे उसको, चपकते हैं ना, और एक चपक जाएगा दूसरा उसको और चपकेगा, उसको तीसरा चपकेगा, उसको चौथा चपकेगा, ऐसे लंबा हो जाएगा। तो मैग्नेट का काम है सब लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचना। कृष्ण बहुत बड़ा मैग्नेट है, हम सब छोटे छोटे टुकड़े हैं, हमको जाके उसको चपकना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं चपकते? भगवान के पास उनसे जाके क्यों नहीं चपक जाते? लोहे का टुकड़ा कब नहीं चपकता है मालूम है? जब उसके ऊपर रस्ट हो जाती है, जंग लग जाता है, यू नो रस्ट, जंग लगता है ना लोहे को, बाहर पड़ा हो, बरसात पड़ जाए, रेती उसके ऊपर, मिट्टी लग जाएगी, तो लोहे के ऊपर रख दो तो भी नहीं चपकेगा, हाँ नहीं चपकेगा ना। तो इसमें गलती किसकी है? चुंबक में तो शक्ति है, वो तो सबको खींच रहा है, लेकिन लोहे ने अपने ऊपर जंग लगा दिया, लोहे ने अपने ऊपर जंग लगा दिया, उसके ऊपर जंग लग गया, अब वो नहीं चपक रहा है। तो जीव संसार के अंदर आके उसको जंग किस चीज का लग गया? पानी ऊपर से गिरता है ना, बाद बरसात का पानी गिरता है ना, उसको अब सीधा ऐसे बर्तन में ले लो, बहुत साफ होता है, लेकिन नीचे मिट्टी में लगेगा तो मेला हो जाएगा ना, तो फिर उसको साफ करना पड़ता है ना। अभी आजकल तो पानी ऐसे नहीं, अब पहले पहले पुराने लोग आए होंगे, बरसात का पानी इकट्ठा करते थे, फिर उसको साफ करते थे, कि साफ करके पीने के लिए उसको साफ करना पड़ता था, मालूम है, साफ कर मिट्टी की अलग करनी पड़ेगी। तो ऐसे हम इस संसार में जैसे गिरे तो हमारा संपर्क किससे हो गया? प्रकृति स्थानी करश्यति, है भगवान के अंश, लेकिन प्रकृति के साथ हमारा ऐसे संबंध हो गया, तो प्रकृति हमको इधर खींच रही है, और हम हैं भगवान के अंश, भगवान उधर खींच रहा है, हम बीच में। आपने देखा है बच्चे खेलते हैं खेल स्कूल में, देखा रस्सा कसी, देखा है एक रस्सा होता है, एक इधर खींचते हैं एक इधर खींचते हैं, अब कौन कहाँ खींचता है उधर जाएगा, तो कृष्ण हमको खींचता है, माया इस तरफ प्रकृति खींचती है, वो ये देखने का अच्छा है उधर चलो, ये खाने का अच्छा है उधर चलो, उधर से वो लेके आना अच्छा है, ये भोग करना है वो भोग करना, ये इधर खींचता है। तो अब करना क्या है कि भगवान कृष्ण को तो आकर्षण है ही, लेकिन हमने क्या कर दिया, अपने ऊपर जंग लगा दिया है, तब क्या करना पड़ेगा, वो मिट्टी को उतारना पड़ेगा। जंग कैसे उतरता है मालूम है? अपने आप नहीं उतार सकता है, अपने आप उतार सकता है लोहे का टुकड़ा जंग? नहीं उतारता ना। The rusted iron cannot get de-rusted by its own efforts. अपने आप नहीं हो सकता है। एक सैंड पेपर होता है, देखा है रेंग बाल, हाँ? और फिर कोई बहुत एक्सपर्ट चाहिए, उसको घिसेगा, रस्ट उतर जाएगा, रस्ट उतर जाएगा ना, तो दैट पीस ऑफ आयरन गोज एंड जस्ट अटैच टू द मैग्नेट। तो हमारे ऊपर रस्ट लगी हुई है, अब कोई एक्सपर्ट चाहिए जो सैंड पेपर से घिसाई करे, हाँ, जो घिसाई करे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस घिसाई को कहा है चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन करना, मार्जन का मतलब सफाई करना, तो घिसाई करनी है, ये कौन करेगा? कोई और करेगा, अपने आप नहीं कर सकता लोहे का टुकड़ा। इसलिए साधु संग में, साधु का काम क्या है? साधु का काम क्या है? घिसाई करना। कैसे घिसाई करेगा? हरि कथा और हरि कीर्तन से घिसाई करेगा। अब कितना उसका आपके ऊपर जंग लगा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जंग लगा हुआ है। जितना जंग ज्यादा होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा। कुछ लोगों को बहुत जल्दी उतर जाता है जंग, जिसका जल्दी जंग उतर गया वो अपने आप कृष्ण में जाके चपक जाएगा, तो फिर उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ केवल जंग उतारने की जरूरत है। तो भागवत धर्म का अर्थ है, हरे कृष्णा, भागवत धर्म का अर्थ है कि हम अपने ऊपर अनादिकाल से लगे हुए मैल को धो लें। कैसे मैल धोएंगे? भगवान के नाम के द्वारा, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय हो, अनादिकाल से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को धो के साफ कर देता है। मैल हम साफ नहीं कर सकते, सफाई हम खुद से अंदर नहीं होगी, कौन सफाई करेगा? भगवान सफाई करेगा। यह भागवत धर्म की विशेषता है। ज्ञान में ज्ञानी अपना प्रयास करेगा कि मैं अपने आप को साफ करूं, योगी अपना प्रयास करेगा मन को एकाग्र करूंगा तब मेरा भगवान में लगेगा। तो ज्ञानी का मन अपने आप को साफ करने का प्रयास करेगा, योगी अपना प्रयास मन को वश में करने का करेगा, लेकिन भगत को कुछ नहीं करना है, भगवान स्वयं सफाई करेंगे। इसलिए इसका नाम भागवत धर्म है, इसमें भगवान सफाई करते हैं। और भागवत में लिखा है बहुत सुंदर, नारद को ब्रह्मा जी बता रहे हैं, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम। अगर नित्य भगवान की कथा सुनी जाए, किसकी कथा? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी जाए अगर श्रद्धया, वे श्रद्धा के साथ नित्यम प्रतिदिन उत्साह के साथ। तो एक और फिर लाइन में क्या लिखा है, गृणतश्च स्वचेष्टितम। सुनने के बाद उसको ग्रहण करना चाहिए, वन शुड नॉट ओनली लिसन। स्वचेष्टितम, चेष्टा पता है किसको कहते हैं? बहुत बड़ा प्रयास करना चाहिए उस कथा को हृदय में उतारने का। सुनने वालों की कथा पता है, सुनने वाले चार प्रकार के सुनने वाले होते हैं। कभी हमने बताया आपको चार प्रकार के सुनने वाले? नहीं बताया। हरे कृष्ण, एक कहीं मेला था, सत्संग हो रहा था, बाहर एक आदमी मूर्तियां बेच रहा था। तो मूर्तियां कैसी थी? चार एक जैसी सुंदर मूर्तियां थी, एक जैसी देखने में बिल्कुल। सो बोला कितने की है? बोला ये मुफ्त की, फ्री। बोला दूसरी वाली बोला 10 रुपये की, बोला तीसरी 100 रुपये की, चौथी 500 रुपये की। तो बोला मुफ्त वाली दे दो, सब एक जैसी हैं, फ्री वाली दे दो। बोला फ्री नहीं, चारों साथ ले लो। तो 510 रुपया कौन दे, 610 रुपया, 610 रुपीज दो, एक फ्री में ले लो। हाँ, तो बोलने पड़ा है, तो बोले सब एक जैसी है, तो फ्री वाली को ले लेते हैं। नहीं नहीं बोला, सब साथ में लेना पड़ेगा। तो एक आदमी समझदार आया, बोले सही सब दे दो। लेने के बाद बोला ये पैसे लो, अब बताओ कि ये फ्री की क्यों है, ये 10 की क्यों है, ये 100 की क्यों है, 500 की क्यों है। उसने बोला इधर आओ। एक मूर्ति उठाई, एक तार लिया, वायर लिया, उसके कान में डाला, नहीं गया। दूसरे में डाला, नहीं गया। बोला ये मुफ्त की मूर्ति है, ये जाती है कथा में, बैठती है, लेकिन एक शब्द भी कान में नहीं आने देती, बैठा होता है, प्रसाद के टाइम के उठेगा, बाहर जाके खड़ा हो जाए, एक चीज कान में नहीं जाने देगा। मुफ्त की मूर्ति है, लेकिन है सुंदर, बैठी है लाइन में, कान में कोई शब्द जाए उतनी जगह नहीं, बिल्कुल कान बंद। बोला 10 रुपये वाली मूर्ति, बोला उसने तार डाला इस कान में, इधर से बाहर निकला। बोला ये यहां से सुनता है, यहां से बाहर निकाल देता है, जब तक सुनता है तब तक अंदर जा देता, फिर बाहर निकल गया कान में। तो इतनी कथा उसको सुनता है। तो एक बच्चे बाबा था ऐसे, पहले का उदाहरण ऐसे देते हैं, को दो मित्र जा रहे थे, तो घर से निकले, एक ने बोला आज कथा हो रही है भागवत, वहां धर्म की चलेंगे, वो इस्कान वालों ने बहुत अच्छी कथा की है। दूसरा बोलता आज तो मेरे को फिल्म देखने जाना है, मैं तो जाऊंगा सिनेमा में। बोला नहीं नहीं भाई, तुमको सिनेमा में नहीं जाना चाहिए, तुम कथा चलो देखने चलो। बोला नहीं नहीं नहीं, तो वो चला गया सिनेमा में, ये आया कथा में, ये कथा में बैठा है। बोला वो मेरा दोस्त तो अभी सिनेमा में बहुत अच्छा सीन देखता होगा। आप उसका चिंतन इधर का, वो उधर इधर बैठा, इधर है वो सिनेमा, उसको वो उस सिनेमा उसको याद आ रही, तो यहाँ आता हो है लेकिन दिमाग उसका वहां पड़ा होता है। और दूसरा इधर से सुनता है, इधर से निकालता है। एक बाबा 15 साल से कथा सुनने जाता था, रोज कथा सुनने जाता था, उसका बेटा जवान हो गया, दुकान के ऊपर बैठा बैठा था बेटा, कोई आदमी माँ चीज लेने आया, कितने की है? बोला पता नहीं, पापा से पूछ के आता, बाबा से पूछ के आऊँगा। वो कथा में आया, तो कथा चल रही थी, महाराज कथा कर रहा था, गाय हमारी माता है, बैल धर्म का प्रतीक, हमारे पिता समान है, जब कहीं गाय देखो, बैल देखो, वो खाता देखो तो हाथ जोड़ के कहो कृपा करना हमारे ऊपर, दया करना और खिलाओ। ये कथा सुनना था, बच्चा अंदर आया, पापा को पिताजी वो चीज मांग रहा है कितने की है। पिताजी बोले मैं अभी मैं आता हूँ, ठहरो बेटा, बस मैं अभी बता रहा हूँ, तो जाओ मैं आ रहा हूँ। ये गया दुकान पे बच्चा, तो कहीं से एक गाय आई, बाहर बोरी में चावल रखा था, खाने लगी। ये खड़ा हो गया, मेरी माँ बड़ी कृपा की, अभी महाराज कह रहे थे कथा में कि गाय की सेवा करनी चाहिए। आप वो बाबा 15 साल से कथा सुनता था, कथा पूरी हुई, वहां आया देखा गाय को, अरे गाय खा रही है, 2 गाय को मारा, 3 लड़के को मारा, बोला देखता नहीं है गाय खा रही है। बोला पापा अभी कथा में महाराज कह रहा था ना गाय माता को खाने देना। बोला ये तो महाराज रोज बोलता है, मैं रोज सुनता हूं। ऐसे थोड़ी कि वो घर में लाके कथा में करने बातें करनी है, कथा सुनने रोज जाते हैं, उधर सुनते हैं, उधर ही छोड़ के आते हैं, साथ थोड़ी जाते हैं घर में। तो कथा घर में थोड़ी लेके आते हैं। तो ऐसे सुनने वाले बहुत होते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, आहा बस अच्छा है, बाहर जाते हैं, पता गए थे, बात खत्म हो गई। पर ये 10 रुपये वाली है, कम से कम जब तक बैठता है तब तक तो सुनता है, वो तो बैठा हुआ भी नहीं सुनता है। पति ने तीसरे को उठाया, इधर से कान से डाला, इधर कान से नहीं निकला, मुंह से बाहर निकल आया। बोला ये 100 रुपये वाली मूर्ति है। बोला ये क्या करता है? बोला ये कथा सुनता है और सुनने के बाद बाहर जाके कहीं कथा शुरू करता है, कथा शुरू करता है, दूसरों को बताता है, लेकिन क्या शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं पढ़ता है, इधर की सुनी उधर बताए, उधर से नहीं उधर बताएगा। जैसे हम कहीं भी जाते हैं लोग प्रश्न पूछते हैं, तो भगवत गीता में लिखा है कि द्रौपदी का चीर है, भगवत गीता में कहा है द्रौपदी का चीर? तो बोला वो भगवत गीता, भागवत, भगवत गीता एक नहीं है? नहीं, एक भगवत गीता। तो भागवत क्या है, भगवत गीता ये भी पता नहीं है दोनों का? तो कथा सुनिए, ये हमारे दादाजी ऐसे कहा करते थे, हमने वहां से सुनिए। तो कथा सुनेंगे मुंह से बात, अरे कहीं गुरुजन के पास जाके शिक्षा ग्रहण की है? नहीं, कथा सुनी थी, बोलना शुरू करते थे। 100 रुपये कम से कम दूसरे को बता दो, आया कि अच्छी बात सुन के आया। अब 500 वाली मूर्ति इधर से डाला, न इधर से निकला, न मुंह से निकला, सीधा हृदय में चला गया, दिल में चला गया। बोला ये सुनने वाला असली सुनने वाला है, जो सुनता है उसको हृदय में उतार देता है और उसको ऐसा पकड़ लेता है कि उसके ऊपर जीवन में अभ्यास करता है। तो ये कहते हैं ग्रहणतश्च स्वचेष्टतम, कि ग्रहण में कान से सुनने का काम कान करेगा, तो सुनने से काम तो नहीं चलेगा, दिमाग से समझने का प्रयास करना पड़ेगा, दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड। लेकिन समझ भी जाने के बाद दिल करेगा तो उसके ऊपर अभ्यास करेगा। तो तीसरा काम है अभ्यास करना, ये काम है दिल का। हम एक उदाहरण रोज देते हैं, बीमार हो गया ये हमारा अश्विन, खांसी हो गया, हमने बोला खांसी हो गया तो डॉक्टर के पास जाओ। बोला हाँ डॉक्टर के पास जाता हूँ। गया, 500 रुपया फी दिया, डॉक्टर को दिखाया, दवाई लिख के दी, गया स्टोर पे, डॉक्टर से दवाई ले आया 300 रुपये की। अरे खांसी हो रही है अभी आज फिर अश्विन, डॉक्टर को दिखाया? हाँ ना डॉक्टर को दिखाया गया, 500 रुपया लिया डॉक्टर ने। अरे भाई दवाई लाए? हाँ बड़े स्टोर से दवाई लाए, देखो ये 3 बोतलें पड़ी है। अश्विन दवाई खाई? बोला खाई नहीं। अरे तो खाई नहीं तो क्या डॉक्टर को दिखाया आएगा, दवाई घर में रखा उसे खांसी थोड़ी जाएगी, दवाई खाएगा तब जाएगी ना। कथा सुन के आया हमारे, हाँ कथा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कथा सुन के आया। कथा में क्या कहा? बोला कहा था हरे कृष्णा जपना चाहिए। बोला माला भी वहां से दी हमको। बोला तुमने घर में आया कभी जपी? अभी वो तो उधर ही पड़ी है, जपी नहीं है। तो जपी नहीं है तो फायदा कहां से होगा? तो अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब अनुभव नहीं होगा। रियलाइजेशन ओनली कम्स व्हेन यू प्रैक्टिस। दिमाग से ओनली यू कैन नो। नॉलेज कहां से आएगा? दिमाग से नॉलेज आएगा। कान से इंफॉर्मेशन, हियरिंग इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, प्रैक्टिसिंग रियलाइजेशन, 3 स्टेप है। इसको वैदिक साहित्य में बोलते थे श्रवण मनन निध्यासन, सुनो समझो और करो। कुछ लोग कितना भी प्रयास करें ना करते नहीं है, उनको फिर दूसरे ढंग से बोलना पड़ेगा। वो खांसी हो रही थी अश्विन को, बोलते खांसी क्यों हो रही? बोला अब ये तो बादशाह लड़का है, इसको छोड़ते हैं दूसरे की बात करते हैं। वो रोज कोई सिगरेट पीता या खांसी होती थी तो बोलता डॉक्टर साहब दवाई दे दो। डॉक्टर बोलता भाई सिगरेट छोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे दवाई देने से क्या होगा? बोला नहीं डॉक्टर सिगरेट नहीं छोड़ूंगा, दवाई आप दीजिए अच्छी। तो दवाई डॉक्टर से लाता था, खांसी जाती नहीं थी। एक बड़ा बुद्धिमान वेद आया, नारद जी जैसा समझदार कोई था, उसने कहा आपका सुना है बहुत अच्छी हो, दवाई देंगे? हाँ दवाई देंगे। बोला सिगरेट छोड़ना नहीं पड़ेगा? बोला बिल्कुल, दवा के पियो, हमारी दवाई भी खाओ। बोला फायदा होगा? बोला फायदा क्या, तीन फायदे हैं। बोला क्या तीन फायदे हैं? बोला तुम सिगरेट पीते रहना, दवाई खाते रहना, तेरे को तीन बहुत बड़े फायदे। बोला क्या फायदा है? बोला तेरे घर में चोर नहीं आएगा, तेरे को कुत्ता नहीं काटेगा, और तेरे को बुढ़ापा नहीं आएगा। बड़ा खुश हो गया कि ये तो बड़ा अच्छा वेद है, दवाई छुड़ाता भी नहीं है, दवाई भी देता है। और फिर तो महाराज बताओ तो मेरे घर में चोर क्यों नहीं आएगा? बोला इतनी खांसी बढ़ जाएगी कि तुम सोए हुए भी नहीं तो चोर कैसे घर में आएगा? बोले कुत्ता क्यों नहीं काटेगा महाराज? बोला तुम सीधा थोड़ी चलोगे, खांस खांस के ड्रेस से लाठी उठा के चलोगे, हाथ में लाठी होगी तो कुत्ता आएगा नहीं। बोला फिर बुढ़ापा महाराज कैसे नहीं मेरे को आएगा? बोला तुम जवानी में मर जाओगे मेरे भाई। अरे इसके ने कहा मर जाऊंगा, उस दिन सिगरेट छोड़ दिया। तो जब तक ऐसे उसको नहीं बताया जाता तब तक उससे ये बीमारी छोड़ती नहीं है उसको। तो ये कहने का ढंग होता है ना, ये बुद्धिमान व्यक्ति इस तरीके से समझाते हैं कि भाई ये संसार के अंदर भगवान का नाम नहीं जपोगे तो मर जाओगे कुत्ते की मौत, भगवान का नाम जपो तब आपका कल्याण होगा। तो कथा सुनने के बाद गृणतश्च स्वचेष्टितम बहुत प्रयास करता है। आज कथा में ये कथा में सुना था, कलयुग बहुत भारी समय है, लेकिन कलयुग के प्रभाव को कम करना है तो भगवान कृष्ण का नाम जपना चाहिए। तो मैं समय निकालकर नाम जपूंगा, अभी आज मैं निश्चित रूप से नाम जपूंगा, आज जाके ये संकल्प करे, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, अभी आज करना चाहिए, कल तक के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, कल के ऊपर छोड़ने वाला बुद्धिमान नहीं है, अभी करना चाहिए, आज करना चाहिए। तो जो ऐसे सोचता है उसके लिए भगवान कहते हैं कालेन अति दीर्घेण, बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी भगवान विशते हृदय, भगवान आके हृदय में बैठ जाएंगे, भगवान आके हृदय में बैठ जाएंगे। ये भागवत धर्म है, भागवत के अंदर पहले लिखा है तत्क्षणात शुश्रुताम तत्क्षणात। घर से आपने ये विचार किया ना कि हम कृष्ण कथा सुनने जा रहे हैं, भक्तों के संग में भगवान का कथा कीर्तन सुनेंगे, वो भगवान कहेगा अवरुद्धेते, लिखा है अवरुद्धेते। अवरुद्ध पता है किसको कहते हैं? ये गाड़ी रोकते हैं ना, ये ब्रेकर आते हैं ना, स्पीड ब्रेकर, क्या बोलते हैं इसको आप? हम इसको कहते हैं स्लीपिंग पुलिसमैन, सोया हुआ सिपाही। पुलिस वाला होता है ना, हाथ ऐसे करता है गाड़ी खड़ी करनी, ये ऐसे खड़ा ना गाड़ी को खड़ी करनी पड़ती है, क्या बोलते हैं स्पीड ब्रेकर को आपकी भाषा में? क्या बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट, स्पीड ब्रेकर, गाड़ी को ऐसे रोकना पड़ता है ना। अभी आ रहे थे डॉक्टर जी के पास, फास्ट आ रहा था, आगे ब्रेकर आया, फिर ब्रेक लगाया, तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी ले जाने में तो गाड़ी रोकनी पड़ती है, तब ले जाते हैं। हरे कृष्ण, तो अवरोध का कहते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं गति अवरोधक, स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर का हिंदी अनुवाद है गति अवरोधक, मीन्स आपकी स्पीड को रोकने वाला। तो अवरुद्धते तत्क्षणात, जैसे घर से आपने ये विचार किया ना कि हम मंदिर में भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं और भागवत की कथा सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान का नाम जपें, उसी वक्त भगवान हृदय में आके बैठ जाते हैं, भगवान उस वक्त आके हृदय में बैठ जाते हैं। ये भागवत का तीसरा श्लोक है, मंगलाचरण का श्लोक है। भागवत के पहले तीन श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है, और मंगलाचरण में ये बहुत सुंदर शब्द है कि भगवान आके हृदय में बैठ जाते हैं। एक भगत ने कहा भगवान हृदय में बैठ जाते हैं फिर तो परेशान हो जाएंगे, वो उसको अगरबत्ती करनी पड़ेगी, वो उसको आरती करनी पड़ेगी, अंदर कैसे करेंगे? अंदर भगवान आके बैठ जाएगा हृदय में तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो दूसरे ने पूछा आएगा कहाँ से, कैसे आएगा अंदर, भगवान दिल में कहाँ से आएगा? भगवान विशते हृदय, भगवान आके हृदय में बैठ जाएगा तो कहाँ से आएगा भगवान? तब दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं परवेष्ट करण रंध्रेण, कानों के द्वारा भगवान हृदय में आते हैं। भगवान को कैसे देखते हैं? आंखों से भगवान को नहीं देखा जाता है, भगवान को कान से देखा जाता है, श्रोत इक्षताम, कान के द्वारा भगवान को देखा जाता है। भगवान कान से हृदय में आएंगे, प्रवेश करण रंध्रेण, बोला फिर कहां जाके बैठेंगे, सरोरोहम, हृदय कमल के ऊपर जाकर बैठेंगे, स्वानाम, जैसा आपका भाव होगा। अगर आपका भाव भगवान को मित्र बनाने का है तो मित्र बन के आके बैठ जाएंगे, आपका भाव बालक बनाने का है तो बालक बना के बैठ जाएंगे, अगर आप प्रेम करते हो तो श्याम सुंदर त्रिभंग ललित में खड़े हो जाएंगे, अंदर आपका जैसा भाव है वैसे अंदर खड़े हो जाएंगे। तो किसी बोला करेंगे क्या अंदर, ये बात सुनने की है, भागवत धर्म की विशेषता ये है सुनने की है, क्या करेंगे भगवान, धुनोति शमलम कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण अंदर जाते ही सारे जो मैल अंदर है, कचरा है, जो जंग लगा हुआ है, जो रस्ट है, उसको धोते हैं। कौन साफ करता है, भगवान साफ करते हैं। ये भागवत धर्म की विशेषता है। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है ना, माता जी बच्चा होता है ना, बच्चे को कौन साफ करता है, मलमूत्र में बच्चा पड़ा होता है अपने आप को साफ करता है क्या, नहीं करता है ना, कौन करता है, माँ करती है ना, माँ करती है ना बच्चे को साफ। तो ऐसे भगवान अपने भक्त का सारा हृदय के अंदर क्या है, काम क्रोध लोभ मोह जितने भी ये विकार हैं उन सबको साफ कर देते हैं। ये शब्द क्या लिखा है, धुनोती मतलब धोता है, शमलम सारे मैल, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। तो भागवत धर्म का अर्थ है आप भगवान के चरणों में अपने आप को डाल दो, फिर भगवान हृदय को साफ कर देंगे, जैसे मां अपने बेटे को धो के साफ करती। ज्ञान ऐसा नहीं है, आपको खुद सफाई करनी पड़ेगी। ज्ञान में पता है क्या होता है, ज्ञान में थोड़ी देर के लिए सारा कचरा नीचे बैठ जाता है और लगता है पानी बहुत साफ है, सफाई नहीं होती है, कचरा नीचे बैठता है, समझे, सेटल में ऑल दी सेडिमेंट्स दे सेटल इन दी बॉटम एंड इट लुक्स वेरी नाइस। ज्ञानी बोलता है ओ मन हमारा एकाग्र हो गया, थोड़ी देर के लिए चित्त के अंदर चमका, ओ प्रकाश दिख रहा है, लेकिन जैसे ही सामने से कोई इंद्रियों की विषय आ गई तो एकदम ऐसे हिलेगा अंदर, वो कचरा ऊपर आ जाएगा, जैसे कभी हिलाओगे ना उसको कचरा ऊपर आ जाएगा। तो ज्ञानी का कचरा साफ नहीं होता है, नीचे बैठ जाता है, तो थोड़ी देर के लिए उसको तो प्रकाश नजर आता है, लेकिन जैसे कोई इंद्रिय का विषय सामने आ गया तो फिर उसका मन स्थिर रहता नहीं है, क्योंकि कचरा अभी तक अंदर ही पड़ा है, ऊपर आ जाएगा। लेकिन भगवान अपने भक्त का सारा मैल धो के साफ करते हैं। कैसे करते हैं, सलीलम यथा सरत, जैसे बरसात के मौसम में बरसात पड़ेगी ना, जो मैला पानी होता है निकल के चला जाता है, साफ हो जाता है, देखा बरसात में सब कुछ साफ हो जाता है, ऐसे भगवान अपने भक्त का हृदय धोकर साफ कर देते, धोकर बिल्कुल साफ कर देते। तो भगवान हृदय में क्यों आते हैं, हमारा हृदय साफ। बोला किसने बोला क्यों हृदय साफ करेंगे, भगवान ने कहा अभी मेरे को इसने बुलाया है, मेरे को यहां रहना है, ये तो मूर्ख से सफाई होगी नहीं, मैं ही कर दूं और क्या करूं, ऐसे कई जन्मों से नहीं हो रही है, इसको देखा है नहीं कर सकता है, क्या करूं, लेकिन अब मेरे पास आया तो मैं कर लूं और क्या करूं, अब मेरे पास आ गया है तो मैं इसकी सफाई कर देता हूं। ये तो इसीलिए ये भगवत गीता का बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाक, दुराचारी में कोई दुराचारी भले हो, पापी से बड़ा पापी हो, लेकिन मेरा भजन करने के लिए बैठ जाता है, साधु रेव मंतव्य, उसको साधु मान लो। अर्जुन ने पूछा उसको साधु कैसे माने, कई सालों से पाप करता आ रहा है तो इसे जल्दी कैसे साधु हो जाएगा। तो भगवान कहते क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, भगवान ऐसे उंगलियों किया, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, अभी अभी वो धर्मात्मा बन जाएगा। तो अपने प्रयास से नहीं 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 नहीं, मैं उसका मेल साफ कर दूंगा, क्योंकि वो मेरे पास आया है ना, क्योंकि मेरे पास आया है और मैं अपने भक्त का हृदय को चमका के साफ कर देता हूं, ऐसा शीशा चमका देता हूं कि मैं उसके अंदर देखने में आ जाता हूं। भगवान जब भक्त का हृदय धो के साफ करते हैं तो भगवान कहां बैठे हुए हैं, सर्वस्चाहम हृदय सनिविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। तो भक्त के हृदय में भगवान का दर्शन होता है। क्या लिखा है, प्रेमंजन चरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदरम अचिंतम गुणस्वरूपम गोविंदम आदिपुरुषम तमाम। जिसके जिसका हृदय भगवान ने धो के साफ कर दिया ना, उसके पहले पहले उसके अंदर क्या भगवान का प्रेम, भगवान का प्रेम उत्पन्न होगा। और भगवान का प्रेम उत्पन्न होते ही वो आंखें ऐसे प्रेम से हृदय के अंदर हर वक्त उसको भगवान श्याम सुंदर विलोक अवलोकयन्ति, अवलोकन का मतलब देखता है, अवलोकन करने का मतलब देखना, भगवान को हृदय में देखता है, अपने हृदय में देखता है, अपने हृदय में नहीं फिर सबके हृदय में उसको दिखता है, इसलिए वो सबका सम्मान करता है। तो कब करेगा ये, जब पहले हृदय साफ होगा। तो भागवत धर्म की विशेषता ये है कि भगवान अपने भक्त का सारा मैल साफ करते, जबकि बाकी और जितने मार्ग हैं उसमें प्रयास स्वयं को करना पड़ता है, लेकिन यहां भगवान विशेष रूप से अपने भक्त का हृदय साफ करता है। तो उस भगवान का शरण क्यों नहीं ले, उसकी सेवा क्यों नहीं करें जो हमारे हृदय का सारा मैल साफ कर देगा, लेना चाहिए ना। तो भागवत धर्म का उद्देश्य है कि आप सब इस मानव जन्म में उस भगवान का शरण ले लो, कृष्ण भगवान। भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परितज माम एकम शरण, मेरा अकेले का शरण लो। जब भगवान ने यह कह दिया ना, जब व्रज कह दिया तो उसको वृंदावन याद आ गया, अरे ऐसा शरण तो किसी ने आज तक नहीं लिया है, सवाए ब्रज के गोपियों ने मेरा ऐसा शरण लिया था, सारे धर्मों को परित्याग कर दिया था गोपियों ने, न घर कुल का धर्म का मर्यादा का देखा था कि कुल की मर्यादा क्या है, कौन क्या कहेगा, संसार की किसी चीज की चिंता नहीं की, केवल मेरे को अपना समर्पण कर दिया। व्रज शब्द कहते ही भगवान श्री कृष्ण कह तो गीता रहे थे कुरुक्षेत्र में, लेकिन सर्वधर्मान परिमाम एकम व्रज, व्रज कहते ही भगवान के हृदय में वृंदावन ऐसे स्फुरित हो गया, भगवान को अपने वो भक्त याद आ गए जिन्होंने ऐसा सर्वधर्मान परित्यज किया था, जो भगवान के लिए सब कुछ संसार के धर्मों का परित्याग करके किसी चीज की चिंता न करते हुए भगवान के शरण में जाके पड़े थे। तो ऐसा जब भगवान कहते हैं ये शब्द, जब भगवान कहते हैं तब भगवान भाव में आ जाते हैं, कृष्ण को ये भाव आता है ऐसे मेरे भक्त कैसे प्रेमी होते। तो भगवान श्री कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक का मतलब है ही इज द इनिशिएटर ऑफ भागवत धर्म। भगवत गीता देने की जरूरत क्या थी, पहले ही वेद तो पढ़े थे, व्यासदेव तो बैठा था ना, व्यासदेव ने वेद तो लिख दिए थे। कभी इसके ऊपर सोचिए कि व्यासदेव ने वेद तो पहले ही लिख दिए थे, वेदों के अंदर सारा ज्ञान तो दिया था, फिर भगवान श्री कृष्ण को गीता बताने की जरूरत क्या पड़ी। वेदों के अंदर जो मार्ग है, कल हमने कहा था एक प्रवृत्ति मार्ग है जो गृहस्थियों के लिए है, एक निवृत्ति मार्ग है जो सन्यासियों के लिए, लेकिन भगवान ने इन दो मार्गों को छोड़कर बीच का मार्ग दिया भागवत मार्ग। भगवत गीता भागवत मार्ग है और भगवत गीता के ऊपर भागवत श्रीमद् भागवत में भागवत मार्ग, कल हमने कहा नारद मुनि से भगवान के पिता वसुदेव ने पूछा था कि हमें बताइए भागवत धर्म क्या है। तब भागवत धर्म का वर्णन 11वें स्कंद में आता है श्रीमद् भागवत में, नव योगेंद्र महाराज निमि को भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। उस भागवत धर्म के उपदेश में एक ही बात कहते हैं, अच्युत भगवान के शरण जो कथा सुनता है, उसका जो कीर्तन करता है, उसका जो स्मरण करता है, यही भागवत धर्म। और यही भागवत में पहला प्रश्न पूछा गया था, परीक्षित महाराज ने यह पूछा था, देखो इसको कहते हैं भागवत पुरुष, जो सबका कल्याण पहले चाहे, अपना कल्याण बाद में चाहे, पहले सबका कल्याण होना चाहिए फिर मेरा कल्याण हो। परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं, सब लोगों का, सब समय, सब जगह करने योग्य एक काम बताओ क्या है। All people, all the time, all places, only what is the only कर्म they should do, one only activity they should do, क्या करना चाहिए सब लोगों को, बच्चे को, बूढ़े को, माता को, पिता को, नहीं सबको, सब जगह क्या करना चाहिए। और फिर पूछते हैं अपने लिए, मिर्या माना है, one who is near to the death, what shall he do, उसको क्या करना चाहिए, जिसका मृत्यु बहुत निकट में है उसको क्या करना चाहिए। दो प्रश्न पूछे हैं सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने, दो प्रश्न पूछे हैं। तो भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म में इसका उत्तर देता है परीक्षित सुखदेव महाराज, एकदम उत्तर देता है। उत्तर देने से पहले तो बहुत बड़ा भारी बात ला, दिन सारा दिन कमाने में, रात को भोग में ये लोग सोते रहते हैं, इनका जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, ये काहे के लिए जी रहे हैं, इन लोगों के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जो लोग ये काम करेंगे वो अपना जन्म सफल होंगे। क्या काम करेंगे? तो तीन शब्द बोले हैं, तस्माद इसलिए, इसलिए श्रोतव, इसलिए भग, इसलिए क्या, ईश्वर तस्माद भारत सर्वात्मा ईश्वरो भगवान हरि, तस्माद भारत सर्वात्मा, इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, सर्वात्मा जो भगवान सबके हृदय में विराजमान है, सर्वात्मा का अर्थ है जो सबके हृदय में भगवान विराजमान है, और सर्वात्मा का यह भी अर्थ है जो सब लोग जिससे प्रेम करें, जो सबके प्रेम का विषय, सर्वात्मा कौन सा सर्वात्मा, ईश्वरो जो सबका मालिक है, भगवान कहता है ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं, हाँ भूतानाम ईश्वर हो, सब प्राणियों का मैं मालिक हूं, तो वो जो सबका मालिक है ईश्वर हो, भगवान जो स्वयं भगवान है, हरि जो अपने भक्तों का चित्त हर लेता है और अपने भक्तों का दुख भी हर लेता है, उसको हरि बोलते। तो उसका क्या करें, श्रोतव्यम उसके बारे में सुनो, कीर्तत्व्यम उसकी कीर्ति गाओ, स्मृतव्यम और फिर कह दिया यत इच्छते अभयम। अगर आपको भय से मुक्त होना है, आपको भय है कोई संसार में, आप लोगों को कोई भय है मेरे भाइयों माताओं, कोई भय है किस चीज का, भय है संसार में आपको, आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, यू हैव एनी फियर, कोई भय है आपको मेरी मां, हा नो नो फियर, देयर इज नो फियर, मृत्यु का फियर है, वो सूर्यनारायण बोलता है मौत से डरते हैं, मौत से डरते हैं आप लोग, नहीं डरते मृत्यु से, डरते हैं कि नहीं डरते, हाँ हरे कृष्णा, मृत्यु का भय होता है कि नहीं होता है मेरी माँ, इन लोगों को तो आसानी से पता लग जाता है कि मृत्यु का भय है कि नहीं है। मृत्यु आने से पहले बुढ़ापा आता है, वो किस चीज का संकेत है, मृत्यु कहता है अब मेरा आने का समय हो गया, तुम तैयारी करो। तो जब बुढ़ापा आता है उसमें पहले पहले भगवान श्री रामचंद्र के पिताजी दशरथ ने दो बाल सफेद यहां देख लिए, तो उसने कहा अब मैं महाराज, अब मैं अपने पुत्र भगवान राम को राज तिलक दे दूंगा, क्यों, बोला अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब बूढ़ा होऊंगा तो राज काय के लिए करूं, मैं जाके वन में तपस्या करूंगा, क्योंकि राज महल छोड़ के राजा वन में जाके तपस्या करते थे ऋषियों के पास, तो राज से ज्यादा सुख तो तपस्या में था, तब जाते थे ना, नहीं तो क्यों घर छोड़ के जाते, राज पाठ क्यों छोड़ के जाते थे, सब जितने राजाओं को आप देखें इतिहास में कि एक समय पे सारा राज पाठ छोड़ के अपने बेटे को देके और चले जाते थे साधु संतों का संग करने के लिए, वो महत्वपूर्ण था। तो महाराज दशरथ ने दो तीन बाल सफेद यहां देखे तो राजपाठ छोड़ने का संकल्प कर लिया। तो ये बुढ़ापे के सफेद बाल तो हमारे को भी आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, काला कर देते हैं 5 रुपये में जवानी मौत को धोखा देने का प्रयास करते हैं, मोह है नहीं, बुढ़ापा नहीं है, हम जवान हैं। एक बार भगवान से भक्त का भेंट हो गया, भगवान से पूछा कि संसार में भगवान व्हाट इज द मोस्ट आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक मीन्स व्हाट इज वेरी एस्टोनिशिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड। भगवान ने कहा अच्छा तो एक तीन है, एक पहली बताता हूं, बोला पहली बताओ क्या है, बोला छोटा बच्चा कोई होगा ना 10 साल का, इफ इज 10 ईयर ओल्ड, आप उसको बोले अब तो आप जवान हो गए, अब बोले हाँ बिल्कुल मैं जवान हूं, अब तो देखो मैं सब कुछ कर सकता हूं ना, मेरे को दे दो। और अगर हमारे को कोई कहेगा ना प्रभु जी आप 70 साल के तो हो गए, क्या बोलता है 55 से ऊपर थोड़ी हूं, सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का ये है बच्चा जवान जल्दी होना चाहता है और बूढ़ा आगे बढ़ना नहीं चाहता है, पीछे वापस आना चाहता है, दिस इज वेरी एस्टोनिशिंग थिंग, जल्दी बड़ा हो जाऊं, जल्दी बड़ा हो जाऊं। और बड़े को बोलेगा तुम बड़ा होगा, नहीं नहीं मैं इधर ही खड़ा हूं, यहां से आगे नहीं जाऊंगा. दिस वेरी बिग एस्टॉनिशिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड इज कि कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, लेकिन बुढ़ापा जबरदस्ती आ जाता है. तो काले बाल आते हैं, हम सफेद बना देते हैं. तब एक दिन हम कभी सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो दांत नीचे गिरता है. बुढ़ापा बोलता है, अब मैं आ गया हूं, क्या करोगे? हम देखते हैं, तुम आ गए, एक गिर गया ना, हम तीन नए लगा के आते हैं, दो पड़ोस के बिल्कुल सब नए लगा देते हैं. बुढ़ापा कहते हैं, तुम चलो, तुम्हारा टाइम नहीं है. तो हम असल में ये सारे संकेत हैं कि मृत्यु बहुत निकट है. इस संकेत का मतलब है, अब आप संसार का झंझट छोड़ के भगवान का भजन करने को लग जाओ तो अच्छा है. वैसे बचपन में लग जाओ तो सबसे अच्छा है. कौमारम आचरेत प्रज्ञा, अगर बुद्धिमान हो तो बचपन में भगवान का भजन करो. ये छोटे बच्चे बहुत अच्छे हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, माला लटकी हुई है, ये भाग्यशाली. बुढ़ापे में कितना प्रयास करते हैं समझाने का, बहुत मुश्किल है. बुढ़ापे में भगवान का भजन करना बहुत मुश्किल है. तो हरे कृष्णा, क्या बात कर रहे थे? सब लोगों को अगर भय कोई है, जिसको भय थोड़ा भी है, उसको भगवान श्री कृष्ण का कथा सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए. इसको बोलते हैं स्मरण. इस माला का नाम है सिमरणी. इसको संस्कृत में बोलते हैं सिमरणी, जिसके ऊपर भगवान का सिमरण होता है. तो हर एक को, आप जितने यहाँ बैठे हैं, जो पहले जप करते हैं उसको और सावधानी से जप करना चाहिए. जो नहीं कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, ये माला आप लीजिए और रोज भगवान के नाम का जप कीजिए. ये एक काम करने जैसा संसार में है, और सारे काम बेकार है, और कोई काम हमारा साथ नहीं देगा. एक ये काम साथ जाने वाला है. बुद्धिमान व्यक्ति को भागवत धर्म का पालन अभी से करना चाहिए. सावधानी से उठ के सवेले पहले भगवान के नाम का भजन करना चाहिए. जो भगवान को जीवन में पहले रखता है, भगवान उसको भी पहले याद करते हैं. कभी भी संकट आएगा तो भगवान पहले उसको याद करेंगे. जो भगवान को पहले याद करेगा, सारे काम उतार के बाद में भगवान को याद करेंगे, तो भगवान बोला ठीक है, बाद में तुम्हारा थोड़ा तकलीफ हो जाए, बाद में तुम्हारा खबर समाचार लेंगे. यू कीप द लॉर्ड फर्स्ट इन योर लाइफ, ही विल कीप यू फर्स्ट. तो भगवान को जीवन, तो इसलिए कुछ दवाई होती है, उसको खाने का समय होता है, सुबह सवेरे लेना खाली पेट में, तो दवाई जल्दी फायदा करेगी. खाने के बाद लोगे तो वो दवाई कुछ असर नहीं करेगी. तो ये खाली पेट लेने की दवाई है. सुबह सवेले उठ के इसका जप करना चाहिए. सुबह सवेले प्रातः काल उठ के भगवान का स्मरण करना चाहिए. जब शोर नहीं होता है, शांति का समय होता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान में ध्यान लगता है. सतोगुण का समय होता है, दोपहर का रजोगुण का समय होता है. दोपहर को माला जपोगे ना तो आपका मन इधर उधर भटकेगा, और रात तमोगुण का है, हरे कृष्णा कृष्णा, नींद आने लग जाएगी. इसलिए सवेले सवेले सतोगुण के समय में भगवान का भजन करना चाहिए. इसको कहते हैं समर्तव्यम, स्मरण करना चाहिए. कथा तो हम सुना रहे हैं आपको, मंदिर में जाएंगे तो रोज कथा सुनने को मिलेगी, ठीक है. और भगवान का कीर्तन, जहां कोई मिले भगवान की कीर्ति गाओ, भगवान का कीर्तन करो. लेकिन ये स्मरण आपको स्वयं को अकेले को करना है. स्मरण करना आपका, कीर्तन तो सब मिलके करेंगे, लेकिन स्मरण अकेले को करना है. इस स्मरण को कितना महत्व दिया है भगवान श्री कृष्ण ने भागवत धर्म में, ये दूसरी विशेषता है भगवान श्री कृष्ण की. ये बहुत बड़ी क्रांति है. इज अ रिवोल्यूशन इन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बाय लॉर्ड श्री कृष्ण. क्या बोला? यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि. जितने भी यज्ञ हैं जिसमें आपको अग्नि जलानी पड़ेगी, स्वाहा करने पड़ेगा, घी डालना पड़ेगा, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, ये सब यज्ञ को छोड़ो, मेरे नाम का जप करो, ये सब यज्ञों से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ. ये बहुत बड़ा, दिस इज ए बिग रिवोल्यूशन बाय कृष्ण, फर्स्ट टाइम इन द इवोल्यूशन ऑफ द भागवत धर्म, कि भगवान के नाम का जब सब यज्ञ हो गए, ना आग जलाने की जरूरत, ना धुआं करने की जरूरत, ना घी की जरूरत, ना आग की जरूरत, ना पंडित की जरूरत, जीभा को हिलाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये यज्ञ हो गया. यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मी, दसवें अध्याय भगवत गीता का यह श्लोक बहुत बड़ी क्रांति है। न यज्ञ की वेदी बनाने की जरूरत है, न कुंड बनाने की जरूरत है, न अग्नि की, न घी की, कुछ भी नहीं। कहां कर सकते हैं हम? बोले जहां भी हो वहां कर सकते हो। यद करो सी यद असर, जहां भी हो जो भी कर रहे हो करते रहो करते रहो, लेकिन केवल श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, भगवान श्री कृष्ण आपको अर्पण करते हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति है भगवत गीता की। भागवत धर्म की विशेषता ये है, भगवत गीता है क्या? भागवत धर्म है ना, भगवत गीता क्या है? इसको कहते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद को हमारे वैदिक भाषा में कहते हैं अरण्य ज्ञान। अरण्य ज्ञान का मतलब है जहां रण ना हो। अरण्य कहते हैं जंगल को। रामायण में एक अरण्य कांड है ना, रामायण में अरण्य कांड है जब भगवान वन में गए थे। तो ये उपनिषद का ज्ञान वन में जाकर साधुओं के संग में बैठ के प्राप्त किया जाता था। अरण्य का मतलब जहां रण ना हो, जहां शांति हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता रणभूमि में दिया, बिल्कुल उल्टा, अरण्य के ज्ञान को रण में दिया। ये कृष्ण की बड़ी क्रांति है। ये भगवान श्री कृष्ण के भागवत धर्म की विशेषता है कि जिस धर्म को सीखने के लिए घर परिवार दुकान सब छोड़ के मकान हिमालय में जाकर वन में साधुओं के गुरुजन के चरणों में बैठकर और बहुत समय तक सीखना पड़ता था, वो रणभूमि के अंदर छोर के अंदर शहर के अंदर बीच में भगवान ने बहुत आसानी से ये ज्ञान दे दिया। तो भागवत धर्म आपको पालन करने के लिए घर मकान दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहां आप हो वहां रहिए, लेकिन केवल अपने जीवन में भगवान के नाम को जोड़िए। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान के नाम को जीवन में जोड़िए। यह भगवत गीता की बहुत बड़ी विशेषता है। भगवत गीता में भगवान ने यज्ञ को यज्ञशाला से निकालकर, पंडितों के परिवार से बाहर निकालकर आपके घर में आपके पास एक छोटी सी झोली में यज्ञ को दे दिया कि जप करो, यही महान यज्ञ है। इन सब यज्ञों में मेरा स्वरूप जप नाम का यज्ञ, ये कृष्ण भगवान की दूसरी क्रांति है भगवत गीता में। ये भागवत धर्म की दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता है, मैं आपके सारे पापों का भार उठाऊंगा। कौन कहता है मैं आपके पापों का? आम तो हम सर्व पापे, कृष्ण कह रहा है मैं आपके सारे पापों की जिम्मेवारी लेता हूं। आज तक किसी भगवान ने नहीं कहा कि मैं आपके पापों की जिम्मेवारी लेता हूं। पुण्य तो सब लेने को तैयार है संसार में, पाप कोई लेने को तैयार नहीं है। कोई पाप लेता है आपका? नहीं लेता है ना। ये तो मिर्गारी जब मार रहा था पशु, तब उसको मिला नारद मुनि, बोला काय के लिए मार रहे? बोला परिवार के लिए। बोला पूछ क्या परिवार को कि इसका अगर कल दंड मिलेगा तो परिवार भुगतेगा? जाके पूछा घर वाले से कि मैं पशु मारता हूं, कल मेरे को दंड मिलेगा तो आधा आप भुगतोगे? बोला मैं क्यों भुगतोगे, तुम ही भुगतेगा। बोला मैं क्यों, खाती थे तुम भी हो? बोला तुम्हारा धर्म है खिलाना, तुम कैसे लाते थे मुझे क्या पता, तो भुगतना तुमको पड़ेगा। खाने के लिए हमको देना, भुगतोगे तुम? तो कोई संसार में सभी अच्छा, पुण्य मेरे को दे दो, पाप तुम अपना, पाप की गठरी तुम उठाओ। लेकिन ये पहला भगवान है जो भागवत धर्म में कहता है अहम तुम सर्व, तुम्हारे सारे पापों का भार मैं उठाऊंगा। कोई है ऐसा पापों का भार उठाने वाला? कोई नहीं किसी के पापों का भार उठा। लेकिन भगवान कहता मैं आपके पापों का भार उठा। क्यों? क्योंकि भगवान को एक बार आपने हाथ मिला लिया ना, तो फिर आपके पाप रहेंगे ही नहीं। पाप तो भगवान के नाम लेने से भस्म हो जाते, कोई पाप नहीं बचता है, सब भस्म हो जाते भस्म। ये तो भगवान का ज्ञान ऐसा है, अद्वैय ज्ञान ऐसा है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने से पाप तो ऐसे भस्म हो जाते जैसे सूखा घास जल जाता है, सूखे घास की तरह पाप जल जाते हैं। तो ये विशेषता भागवत धर्म की है कि जो कई जन्मों के प्रयास के प्राश्चित के बाद भी पाप नाश नहीं होते, वो केवल भगवान के नाम लेने से, भगवान कृपा से सब पाप नाश हो जाते। तो इतना सरल भागवत धर्म है, जिस भागवत धर्म का आचरण पांडवों ने पहले किया। अपने निकटतम भगवान ने अर्जुन को भागवत धर्म का उपदेश दिया भगवत गीता के रूप में, और फिर उसके पोते परीक्षित महाराज के द्वारा हमारे को श्रीमद् भागवत मिली, भागवत धर्म। तो अर्जुन और परीक्षित ये दो महाभागवत हुए जिन्होंने हमको भागवत धर्म दी। अब देखिए, अर्जुन सन्यासी नहीं है, अर्जुन ब्राह्मण भी नहीं है, परीक्षित सन्यासी नहीं है, परीक्षित ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय हैं, दोनों कर्म कर रहे हैं, एक राज चला रहा था, दूसरा युद्ध कर रहा था। तो अपने काम करते हुए कुछ छोड़ा नहीं, कोई वर्ण का कोई भगवान नहीं चुना कि भाई ब्राह्मण को ही पकड़ के मेरे को देना है कि सन्यासी को ही मैं ज्ञान दूंगा, ऐसा नहीं कहा। देख लो आप, किसी को नहीं, दोनों को नहीं पकड़ा है। एक कर्मठ को जो काम कर सकता है भगवान के लिए, उसको पकड़ लिया भगवान ने कि तुम्हारे को भागवत धर्म देता हूं। इससे भगवान ने यह संकेत किया कि जो मेरी सेवा करेगा भागवत धर्म उसके लिए सुलभ है, उसके लिए कुछ आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है जीवन में। जहां हो वहां रहो, जहां हो वहां रहो। ये तो चेतना महाप्रभु ने बहुत सुंदर कहा जब उसके साथ कूर्मा ब्राह्मण कुरुक्षेत्र से चेतना महाप्रभु से इतना प्रभावित हो गया कि मैं तो आपके साथ चलूंगा, अब मैं घर में न रहूंगा। महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम अपने घर में रहो, हमारे साथ नहीं रहो, तुम यहीं रहो, लेकिन घर में रह के भगवान का नाम ले तो मैं तो आपको भगवान यहीं बैठ के मिल जाएगा, मेरे साथ जाओगे इससे भगवान मिलेगा ये जरूरी नहीं है। गृह ठाको बने ठाको, चाहे घर में हो चाहे वन में हो, जहां भी हो भगवान कृष्ण का नाम लो, आप भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाओगे। ये बहुत सरल भागवत धर्म है, गृह ठाको बने ठाको सत्य सदा हरि बोले था। ये बहुत बड़ी सुंदर शिक्षा दी कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रहते हुए भागवत धर्म का आचरण कर सकते हैं। सन्यासी हजारों साल तक प्रयास करने के बाद भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो आपके घर में बैठकर भगवान का नाम लेके प्रहलाद महाराज की तरफ सात साल की आयु में भगवान को खंभे से प्रकट कर सकते हैं, 5 साल की आयु में दुरु महाराज की तरह भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो इतना सरल धर्म है ये, इस धर्म को अपनाना बुद्धिमान व्यक्ति का ये काम है। मेरे ख्याल में आज हम कहीं और जगह सत्संग करके आ रहे थे तो हमारे को विलंब हो गई, देर हो गई। तो भागवत धर्म का उपदेश भगवान का भजन करना है। कलयुग के अंदर और कोई साधन नहीं है, जैसे कलयुग के प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता है, कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा, उसको रोकना बहुत संभव नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। जैसे अभी बरसात बाहर होने लग जाए, इफ देयर इज रेनिंग आउटसाइड, तो कोई बरसात को रोक सकता है? गवर्नमेंट रोकेगी? प्राइम मिनिस्टर बरसात को रोक सकता है? नहीं। वो जॉर्ज बुश रोकेगा? अमेरिका का प्रेसिडेंट रोक सकता है? नहीं रोक सकता है ना, क्यों? क्योंकि उनके हाथ में नहीं है बरसात को रोकना। तो ऐसे कलयुग को कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप कलयुग। लेकिन बरसात कितनी भी तेज पड़ती हो, लेकिन 100 रुपये का छाता तो आप खरीद सकते हो ना, यू कैन बाय 1 अम्ब्रेला, नहीं? और अपने ऊपर ढक लोगे तो बरसात आपके ऊपर तो नहीं पड़ेगी ना, आपके कपड़े तो गीले नहीं होंगे ना, तो बरसात रोकना मुश्किल है। लेकिन छाता तो सब खरीद कर सकते हो ना, आप सबके पास छाता है ना, यू हैव योर अम्ब्रेला ना। जैसे छाते से हम बरसात से अपनी सुरक्षा करते हैं, ऐसे कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन ये हरि नाम का छाता आप ले लीजिए तो आप उस कलयुग के प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे, उससे आप नहीं भीगेंगे। तो छाता लेना शब्द छोटे से, गरीब आदमी के पास भी छाता होता है कि नहीं होता है? गरीब से गरीब आदमी भी नहीं तो वो प्लास्टिक ऊपर ओढ़ लेता है, लेकिन बरसात बचाने का उसके पास प्रयास तो कर लेता है। बरसात नहीं रुकेगी, कलयुग नहीं रुकेगा, कलयुग अपना प्रभाव और बहुत भयानक दिखाएगा। कलयुग का प्रभाव तो दूसरे 12वें स्कंद श्रीमद् भागवत में कलयुग का बहुत बड़ा भारी प्रभाव दिखाया हुआ है। इतना भारी प्रभाव है कि हम कल थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके कि कितना प्रभाव कलयुग का भारी है। उस भारी प्रभाव के बीच में केवल एक छाता खरीद करना है, अपनी रक्षा करनी। अपनी रक्षा अगर आप चाहते हो कि आप भीगे नहीं, आप कलयुग के प्रभाव से दुखी नहीं हो, आप झगड़े परेशानी संकट पाप ताप संताप से बचना चाहते हो, तो केवल छोटा सा एक छाता खरीद लो, ये भगवान के नाम का एक झोली और एक माला खरीद लो, और एक आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट समय निकालकर रोज भगवान का नाम जपो। और ये खुला नाम हम आपको बताते हैं, छुपा के रखने का नहीं है, हम बता रहे हैं कि ऐसे जपना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ऐसे आज एकादशी का दिन है, आपने भगवान का नाम 8 बार हमारे साथ पूरा जप कर लिया, 8 बार एक माला को 8 दाने के ऊपर माला जप ली। ऐसे ये माला जपने में 7 मिनट लगेंगे आपको, तो आप आधा घंटा जपेंगे तो आपकी 4 माला 5 माला हो जाएंगी। हाँ, तो आप ये छाता खरीद लो और कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए। छोटा बच्चा, आप छाता ले जाती है स्कूल? बेटी आप ले जाती है छाता स्कूल में? ले जाती है ना, तो बच्ची भी छाता ले जाती है। माता जी आप भी ले जाती है ना छाता बाहर जाती है, तो छाता उसको भी चाहिए, छाता उसको भी चाहिए। कलयुग में ऐसे नहीं है कि जो बूढ़े हैं वही भगवान का नाम जपेंगे, नहीं, आपको भी जरूरत है। जैसे छाते की सबको जरूरत है, ऐसे भगवान का नाम जपने की सबको जरूरत है। तो आप भी जपोगी बेटी? हैं, क्या नाम है? दिव्या। नाम दिव्या है तो दिव्य नाम जपो, इसका नाम है दिव्य नाम। ये दिव्य नाम है, संसार का नाम नहीं, ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, ये दिव्य है। दिव्य दिव्य जपो। आपको पूरा मंत्र आ गया हमने बोला? ये बोलो, हरे बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरि बोल। क्या ये तो बच्ची बहुत होशियार है, क्या बात है, नाम ये नाम सार्थक कर दिया दिव्य। माला जपेगी अभी? रोज जपेगी माला? जपती है पहले? ऐसे करती है ना? हाँ, दोनों बोलती है, लेकिन अभी जपेगी ना। वेरी गुड, हरे कृष्णा। तो टाइम मेरे ख्याल में आज का यहाँ, हाँ, तो कोई प्रश्न है? कल कलयुग का क्या प्रभाव होता है और उसको बचने के लिए क्या साधन है, कथा बताएंगे, उस कथा के साथ समाप्ति करेंगे। और जो भगवान का भजन नहीं करता है उसका क्या होता है वो भी बता देंगे। और हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है किसी का? किसी का कोई प्रश्न है? कौन भगवान का नाम जपना शुरू करता है आज से? कोई 10 आदमी ऐसा जो पहली बार आए हों, कल आए हों या आज आए हों, जिनके मन में भगवान ने ये प्रेरणा दी हो कि हम भगवान का नाम जप के अपना जन्म सफल करना चाहता है, हरि नाम का छाता लेकर कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं, ऐसे कोई 10 नए व्यक्ति जो पहले कभी नहीं आए अभी आए हैं, उनके मन में ऐसे भगवान का नाम जपने का प्रेरणा मिली हो कि भागवत धर्म से हमारा जन्म सफल हो सकता है, आसानी से, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब हमारी जिम्मेवारी उठाएगा, कोई है ऐसा तैयार होना? 10 आदमी पहले निकली है भैया, कोई है 10 आदमी? हरे कृष्णा बोलिए बोलिए जल्दी, 1 2 3 4 बोलिए, कल बोलेंगे आज, एक तो उठो भाई, एक 1 पर्सन। सुरेश कहाँ गए? सुरेश सुरेश जो आप शुरू करना पड़ेगा आपको, हो गया सुरेश स्टार्टेड? ओके, सो यू टेक केयर ऑफ सुरेश, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे चैंटिंग 1 राउंड। तो सुरेश हो गया, सुरेश का मतलब है इंद्र, सुरेश देवताओं का मालिक इंद्र। तो इंद्र तो भगवान का भजन करेगा तब उसका राज बचेगा, नहीं तो राज ले जाएगा कोई। अब एक और कोई तैयार? एक माता जी कोई एक तो होना चाहिए आपकी तरफ से भी, बेटा कोई तैयार हो जाओ। कौन पहली बार आप भगवान का नाम भागवत धर्म को कौन शुरू करना चाहता है? जो पहले आते नहीं, जो अभी यहाँ नए आए हैं, जिसके मन में प्रेरणा हुई है कि हमको ये काम करना चाहिए, ये ऐसा मौका फिर मानव जन्म का बार बार नहीं मिलेगा। एक कोई बोलो बोलो बोलो।
सभी 10 रुपये वाली मूर्ति है।
हाँ, 200 है, 10 रुपये वाली मूर्ति है। यहाँ सुना यही छोड़ के जाएंगा। एक महात्मा हुआ करते थे, उसके पास सत्संग में एक दूर से आदमी आता था, तो महाराज बोला आप क्यों नहीं आ रहे हो भाई कथा में रोज? महाराज बहुत दूर है, आने में तकलीफ होती है। तो महाराज ने कहा भाई ठीक है, उस जमाने में गाड़ी तो नहीं थी, तो कहा भाई कोई घोड़ा देख लेना, गधा देख लेना, किसी के ऊपर चढ़ के आ जाना। तो वो बोलता है महाराज हमारे लिए गधा भी आप और घोड़ा भी आप है। हमारे लिए सब कुछ आप है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे, आप करना। तो भाई आप जपोगे तो आपका उद्धार होगा, हमारे करने से नहीं होगा, हमारा काम है आपको जगाना। सामने आपकी चीज ला के रखना, लेकिन मुंह में डालना हमारा काम है, लेकिन फिर निगलना तो आपका काम है ना। तो एक माता जी हिम्मत करो। हाँ, प्रयास सफल होना चाहिए। हरे कृष्णा। कौन हिम्मत कर? दिव्या आप ही कर लो, और कोई नहीं उठ रहा है, करेगी ना दिव्या? हाँ, ये आपके साथ बैठी है ये बच्ची, क्या नाम है बेटा? जया। तो जया क्या आपको अच्छा लगता है? तो दिव्या और जया शुरू करेंगी। हाँ ठीक है, जया बताओ पूरा मंत्र बताओ। जय जया की जय। तो ये दो बच्चियां हमको भगवान का नाम एक बार पूरा मंत्र सुना दिया। पहले याद हो गया था कि अभी याद किया? ओह वेरी गुड। किसकी बच्चियां हैं पिताजी इनका?
सुरेश का।
हाँ? अच्छा, सुरेश की भतीजियां हैं। तो एक ही परिवार का कल्याण होता है लगता है इस बार। लेकिन आप लोग बाबा कुछ करो, ये बच्चे कर रहे हैं, आप कब करेंगे फिर माता जी लोग? नो, अभी रिजर्वेशन है, कुछ सोचेंगे? छोड़ो सब झंझट, भगवान का नाम लेने में देर मत करो। ये तो रावण भी कह के गया था। लक्ष्मण ने पूछा था कि राम ने भेजा था कि पूछ क्या, रावण बड़ा बुद्धिमान है, अंत समय कुछ समय बोला अच्छे काम में देर नहीं करना चाहिए। रावण ने कहा था अच्छे काम में देर करना नहीं चाहिए। मैं सोच रहा था सड़क तक सीढ़ी बना लेता, सब लोग चढ़ के ऊपर घूम के आ जाते, लेकिन मैंने उसमें देर कर दी। तो अच्छे काम में देर कभी नहीं करनी चाहिए, ये तो रावण भी कह के गया है। नहीं कितनी देर कर, कोई नहीं तैयार हो रहा है भाई। सुरेश हरे कृष्ण बोलो, कोई प्रश्न भी नहीं है, करने की इच्छा बहुत की है लेकिन बोलने में थोड़ा सा शर्म आ रहे हैं। भगवान का नाम जपने में शर्माना नहीं चाहिए। सिटी वाले हैं तो चलो गांव में चलते हैं कल। प्लीज डू इट, हम हाथ जोड़ के आपको विनती करते हैं, ये काम काम आएगा और कोई काम काम नहीं आएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। न घर साथ चलेगा, न गाड़ी चार साथ चलेगी, न मकान चलेगा, न दुकान चलेगा, न बैंक बैलेंस चलेगा, केवल ये अपने मुख से जपा हुआ भगवान का नाम साथ चलेगा। जाने के समय एक आदमी भी संसार से जाते हुए एक रुपया साथ ले जाते हुए आज तक नहीं देखा है। तब सिकंदर ने कहा था कफन में, आपको मालूम है कफन में कोई जेब नहीं बनाते हैं, देयर इज नो पॉकेट इन कफन। जब मर जाता है आदमी ना, उसको जो कपड़ा पहनाते हैं उसमें जेब नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ले नहीं जा सकता है। They know there's no pocket in the coffin, there's no pocket because you cannot take anything. तो फिर ये एक स्मरण आप तब उस वक्त पता है क्या करते हैं, आपके यहाँ करते हैं कि नहीं करते? हमारे वहां उस वक्त जब उठा के जाते हैं ना, तब सब लोग कहते हैं राम नाम संग है। आपके यहाँ बोलते हैं? तब सब यही एक काम, बोला राम नाम संग है, राम नाम सब बोलते हैं, एक आदमी नहीं बोलता है। पता नहीं पता है कौन नहीं बोलता है? जो ऊपर सोया होता है। जो ऊपर सोया वो तो बोल नहीं सकता बेचारा है। तब किसी ने, आज तक आपने सुना है किसी ने कहा है कि आपका बैंक बैलेंस संग है, आपका घर परिवार संग है? किसी ने बोला आज तक? नहीं बोला ना। न घर जाएगा साथ, तो इसका मतलब उस वक्त राम नाम संग है, तो अभी क्यों नहीं राम नाम ले लेते? तो कहता कि संग जाए, फिर उस वक्त दूसरे बोलेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, अपना खुद कर लो ना कटा। एक नहीं बोलता है, दुर्भाग्य से उस वक्त उसको मौका नहीं मिलता है, इसलिए वो समय से पहले अपना राम नाम जप लग रो, यही साथ जाएगा। ये धन है आपका, इस धन को इकट्ठा करो, ऐसा धन और कहीं नहीं मिलेगा। और ये भगवान ने बड़ी कृपा करके कल युग में आपको ऐसे सुंदर हाल बना के उसके अंदर बिठा के आपको ये भगवान का नाम मिल रहा है, नहीं तो घर छोड़ के जाके वन में गुरुजनों के चरणों में बैठे जाते तब मिलता था। ये कल युग का मौका है, ये सेल में मिल रहा है, मुफ्त का मिल रहा है, ले लो, बहुत बड़ा लाभ है, मत छोड़ो इस मौके को। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न नहीं है तो कीर्तन करेंगे, थोड़ा कीर्तन कीजिए, लेकिन कल तैयार होके लाइए। मैं कल 15 माला मंदिर से लाऊंगा, 15 आदमी कल चाहिए भगवान का नाम जपने वाले, 15 आदमी अपन को नए चाहिए। 15 आदमी नाम जपेंगे तो हम इंश्योरेंस एजेंट हैं, आपको मालूम इंश्योरेंस वाले होते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस वाले, कि आपकी लाइफ में कोई खतरा हो जाएगा तो हम आपका बीमा दे देंगे, बाद में इंश्योरेंस देंगे। तो इंश्योरेंस जो करता है ना उसको प्रॉफिट ऊपर से मिलता है। तो भगवान के आपके 15 आदमियों की कल इंश्योरेंस करनी है। कहाँ की गारंटी? भगवान तक ले जाने की गारंटी, इंश्योरेंस होगी कल। तो जो आएगा इंश्योरेंस अपनी करा ले, आपका जन्म सफल हो जाएगा। और हमारे को थोड़ा उसमें लाभ ये होगा कि भगवान कहेगा 15 आदमी को भगवान का नाम जपाया, फिर आप 15 और 15 को जपाना, सब पूरे संसार का कल्याण करना है। तो मॉरिशस का कल्याण तो आप लोग करने के लिए प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, कीर्तन। कोई प्रश्न नहीं?